मुझे ताज्जुब है कि रसूलुल्लाह ने हमें यमन या हीरा हिजरत के लिए क्यों नहीं भेजा। मुझे इस बात का डर है कि रास्ते में कहीं बच्चों की जानें न तलफ हो जाएं।
मेरा कबीला कई सालों से शाम में कयाम पजीर है
और हम लोगों की तादाद भी कम है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हम सब का इस्तकबाल कर सकते थे, इसीलिए हमें हफ्शा से क्या वास्ता है। इस्लाम अगर ईसाइयों के लिए काबिल कबूल होता तो हिजाज में मौजूद उनके हम मजहब हमारी हिमायत करते।
हुजूर, जिब्रील अमीन से हम कलाम हुआ करते हैं, यानी उन पर ईमान नहीं रखते। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। उन पर ईमान रखो। यमन पर ईरानी बादशाहत का असर है और मुसलमानों के एक तबके का यमन या हीरा में मौजूद होना किसी लिहाज से भी अकलमंदी नहीं है। यह भी बता दूं कि शामी हमारे हक में किसी किस्म के जुल्म से तरीक नहीं करेंगे।
हाँ, ठीक कहते हो। हमने एक साथ बड़ा लंबा और मुश्किल सफर तय किया है।
हाँ हाँ, तुम सच कहते हो।
ये क्या है? ये कैसी बेएहतियाती है?
क्या हुआ? वो क्या है?
मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात।
वो क्या है?
मक्के वालों का रहनुमा हमारा पीछा कर रहा है। फुजैल के खेमों में जाओ और कह दो कि आग बुझा दे।
ठीक है। कश्ती का मालिक कहाँ है? कहाँ है वो?
तुम्हें कश्ती के मालिक से क्या काम है?
हमें हबशा जाना है।
भगोड़े?
नहीं नहीं नहीं, हम भगोड़े नहीं हैं, नहीं।
मेरा नाम जाफर इब्ने अबी तालिब है और इस जमात का सरपरस्त हूँ मैं। मैं चाहता हूँ हमें तुम हबशा पहुँचा दो।
जाफर अबू तालिब के बेटे?
हाँ हाँ, मैं ही हूँ।
तुम्हारे बाप का नाम मैंने बहुत सुना है, तुम्हें हबशा में क्या काम है?
जानते हो, हम हबशा के हाकिम नज्जासी के लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का एक पैगाम लेकर जा रहे हैं।
ठीक है, हम कल चल पड़ेंगे।
लेकिन बात यह है, हम ठहर नहीं सकते, ये बहुत फौरी काम है, अभी चल पड़े। आपसे इल्तिजा करता हूँ आपसे, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आप मेरी बात माने।
रात के इस वक्त तुम्हें पता है कश्ती को आमादा करने में कितना वक्त लगता है? तुम्हें कल तक सब्र करना पड़ेगा।
आपसे गुजारिश है, खुदा के वास्ते हम पर रहम करें।
और हाँ, चार आदमी का किराया एक दीनार होगा।
मैं हर दो लोगों पर एक दीनार देने को तैयार हूँ, बशर्ते कि इसी वक्त रवाना हो जाओ।
दो ग्रोह बना लो और हर ग्रोह दोनों कश्ती में बैठ जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
उठो उठो उठो, आज रात को ही चल पड़ेंगे। अरे उठो भाई, तुम लोग सब उठो, जल्दी करो, जल्दी उठो उठो उठो। अरे भाई उठो और कश्तियों को तैयार करो, हम अभी हबशा के लिए रवाना हो रहे हैं।
कैसी आवाज थी?
लगता है वो आ रहे हैं।
सलाम हो मक्के के बुजुर्गों पर।
अह, क्या तुमने उनको गिरफ्तार कर लिया?
बोलो जल्दी, क्या हुआ? बोलो।
हम बहुत देर से पहुंचे, वो दो कश्तियों के जरिए हबशा की जानिब रवाना हो गए।
लानत हो ऐ नालायको।
किस्मत ने उनका साथ दिया, वरना हमने कोताही नहीं की थी।
देखते हो, कभी हफ्ते में एक कश्ती भी रवाना नहीं होती है, लेकिन आज रात दो कश्तियां चली गईं, वो भी ऐसे मौके पर कि गुमराह लोग बंदरगाह पहुंच चुके थे। लानत हो ऐसी किस्मत पर।
आप लोग फिक्रमंद ना हो, पुरसुकून रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारी जहमतें जरा बढ़ गई हैं। कंजूसी से काम ना लें, सोने के सिक्कों की थैलियां जरा खोल दें बस।
तुम्हारा मतलब क्या है?
उनको हबशा से वापस ले आएंगे।
ये मुमकिन नहीं है, अब हमारे हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। नज्जाशी उन लोगों को हमारे हवाले नहीं करेगा जो उसके पास पनाह लेंगे।
इसका भी एक रास्ता मौजूद है, नज्जाशी के दरबार में हमारे कुछ दोस्त हैं। बेहतर है अम्र इब्ने आस और अब्दुल्ला इब्ने रबिया को भारी तोहफों के साथ नज्जाशी के दरबार में भेजें। दोनों मक्कार अशख़ास तजर्बेकार और अय्यार हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो भागने वालों को साथ लेकर लौट आएंगे। कैसा रहेगा? तुम लोग मुआफिक हो?
हम रवानगी के लिए तैयार हैं।
बहुत खूब, बहुत ही जबरदस्त है। दोनों तैयार हो, तोहफे तैयार कर लिए। तुम्हें मालूम है कि नज्जाशी के साथ किस तरह बात करनी है।
हाँ, आप फिक्रमंद ना हो।
इस सफर का अंजाम तुम दोनों की जहानत व फतानत पर मुनस्सिर है।
आप इस बात से बेफिक्र रहें, मैं और इब्न रबिया इस सफर की अहमियत से अच्छी तरह आगाह हैं। जब दरबारी हमारे तोहफे वसूल कर लेंगे तो आप मुतमईन रहें कि वो खुद नज्जाशी को आमादा करेंगे कि वो मुहाजरीन को निकाल दें।
तुम लोग इस हद तक अपने आप पर यकीन न रखो और काम को आसान न समझो। मुहाजरीन के ग्रोह का सरबरार जाफर है, उसको फनी खिताबत अपने बाप अबू तालिब से विरसे में मिला है। मुझे नहीं लगता है कि वो बेकार बैठा रहेगा, और तुम लोग अपने मकसद को हासिल करो।
ऐसा आपका सोचना है, शायद वो खिताबत में हम पर बरतरी रखता होगा, लेकिन दरबारी ज्यादातर हमारे हाथ की तरफ देखेंगे। अच्छी और पुरमग़्ज़ बातें एक तो ही दस्त के मुंह से जो निकलती हैं, उनकी हैसियत ऐसे ही होती है जैसे पानी का बुलबुला।
किसी को क्या पता, शायद अमरा सही कह रहा है।
तशरीफ ला रहे हैं।
ह ہم آپ کی شان و شوکت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اے عظیم و عادل انصاف پسند بادشاہ نجاشی اعظم عالم پناہ، حال ہی میں ہمارے کچھ نا تجربے کار اور عقل سے آری نوجوانوں کے ایک گروہ نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا ہے جو نہ آپ کے ملک حبشہ کے سرکاری دین سے شباہت رکھتا ہے اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد کے دین سے۔ اس گروہ کا مقصد اختلاف پیدا کرنا اور مکے کی حکومت حاصل کرنا ہے۔ اس کے افراد آپ کے ملک میں پناہ گزی ہو چکے ہیں تاکہ آزادی اور حبشہ کے پرامن ماحول اور آپ جو دوسروں کے نظریات کا احترام کرتے ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے بڑے ملک میں اپنے خطرناک دین کو فروغ دے سکیں۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ میں مکے کے اکابرین کی جانب سے حبشہ کے طاقتور بادشاہ اعلی حضرت نجاشی اعظم کی خدمت میں، جو کہ حبشہ کے طاقتور اور بلا منازع بادشاہ ہیں، سلام پیش کرتا ہوں اور اعلی حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان خطرناک افراد کو نکال دینے کے احکامات جاری فرمائیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اپنے ملک میں ان کو ضروری ہدایات کے ذریعے اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف لوٹا سکیں۔ اس طرح اس ملک میں ہمارے دشمن کوئی مرکز حاصل نہیں کر سکیں گے اور آپ کے ساتھ ہماری دوستی پائیدار رہے گی۔ امید ہے آپ عنایت فرمائیں گے۔
عالم پناہ، مکے کے ساتھ ہمیشہ ہمارے اچھے تجارتی تعلقات رہے ہیں۔
ان تخریب کاروں کی حبشہ میں کوئی جگہ نہیں ہے عالم پناہ۔
مناسب ہوگا کہ عالم پناہ نجاشی ان لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکے حبشہ سے نکالنے کا حکم صادر کریں۔
آپ کے خیال میں ہمارا انجام کیا ہوگا جعفر؟ کیا نجاشی ہمیں مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے؟
پرسکون رہو، رسول خدا نجاشی جیسے شخص کے بارے میں غلطی نہیں کریں گے، تم مطمئن رہو۔ جس دن حضور نے ہم سے حبشہ جانے کا فرمایا، آپ نے اس دن کے بارے میں بھی سوچا تھا، ورنہ وہ ہمیں یمن، ہیرا یا کسی اور جگہ پر بھیج سکتے تھے۔ تم اپنے آپ پر خوفداری ہونے نہ دو، خدا پر توکل کرو، خدا پر توکل کرو۔ پرسکون رہو، اپنے اعصاب پر قابو رکھو، اعصاب پر قابو رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو، مطمئن رہو۔
جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، مجبور لوگوں کا ایک گروہ میرے ملک میں پناہ لینے آیا ہے جو تمہاری نظر میں مٹھی بھر شورشی اور افراتفری پھیلانے والے عناصر ہیں، لیکن میں تمہاری باتوں کو بغیر تحقیق اور جائزے کے نہیں مانوں گا، اور جب تک تمہارا دعویٰ میرے لیے ثابت نہیں ہو جاتا میں کسی صورت میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پناہ گزینوں کو پیش کیا جائے۔
عالم پناہ، آپ کیوں اپنے آپ کو زحمت دیتے ہیں؟ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے حقیقت کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں کہا ہے۔
تو پھر ان کا سامنا کرنے سے تم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، پناہ گزینوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے، جلدی کرو۔
اطاعت عالم پناہ۔
لعنت ہو شومیر قسمت پر،
حبيبي كنز وفائي يا بشير.